ओम शांति। सभी बाबा की इस तपस्या भूमि में बहुत अलौकिक योग के अच्छे अनुभव कर रहे होंगे। जिस स्थान पर स्वयं ब्रह्मा बाबा ने, जगदम्बा माँ ने, हमारी दादियों ने तपस्या की है, वो स्थान अपने आप में ही विशेष स्थान है। यहाँ आते ही दुनिया के वातावरण से दूर एक अव्यक्त लोक का, सूक्ष्म लोक का अच्छा अनुभव होता है। और अभी तो सवेरे सवेरे बादल भी आते हैं, वो भी सूक्ष्म मथन का अनुभव कराते हैं। तो आप सभी बहुत अच्छी तपस्या कर रहे हैं, अच्छे अनुभव कर रहे होंगे। हम सबके इस ब्राह्मण जीवन का एक लक्ष्य है ब्राह्मण सो फरिश्ता सो देवता बनना। जो भी कुछ हम पुरुषार्थ कर रहे हैं, स्वयं को संपन्न संपूर्ण कर्मातीत अवस्था को प्राप्त करने का, फरिश्ता बनने का, उस फरिश्ता बनने के पुरुषार्थ में आज की मुरली में जो बाबा ने अंडरलाइन कराया कि बच्चे जब तुम संपूर्ण फरिश्ते बन जाओगे तो एक कथा बंद हो जाएगी। अभी कथा सुन रहे हैं ना, लेकिन हम सब ये कथा सुनते सुनते, बाबा के महावाक्य सुनते सुनते संपन्नता को प्राप्त कर लेते हैं। ब्रह्मा बाबा ने जिस तरह से पुरुषार्थ किया, इतने सब बच्चों की पालना करते, इतनी जवाबदारियां संभालते निभाते, और बाबा फरिश्ता बन गए। चलते फिरते भी साकार में जिन्होंने बाबा को देखा, अनुभव किया, वो यही वर्णन करते हैं कि बाबा यहाँ होते हुए भी यहाँ नहीं थे, देख रहे हैं, सुन रहे हैं, बात कर रहे हैं, लेकिन कहीं दूसरी जगह खोए हुए हैं। उन्हें कोई भी व्यक्त और व्यर्थ बातें अपनी तरफ आकर्षित नहीं करती है। साकार में ही बाबा ने अपने जीवन से फरिश्ता स्वरूप का अनुभव कराया और पुरुषार्थ करते करते वो अव्यक्त फरिश्ता, संपूर्ण फरिश्ता बन गए। उस फरिश्ते की क्या विशेषता थी आप लोगों ने सुना होगा। लास्ट में ब्रह्मा बाबा ने जो बहुत गहरा पुरुषार्थ किया, वो एक संदेशी को पूछ करके कि आप इस ब्रह्मा को देखो और ऊपर वाले ब्रह्मा को देखो, जो संपूर्ण ब्रह्मा, अव्यक्त ब्रह्मा वतन में आप संदेशियों को दिखाई देता है, उस ब्रह्मा में और इसमें क्या अंतर है। तो एक साल पहले ही बाबा ने संदेशी को वतन में भेजा, और जब संदेशी देख करके आई तो कहने लगी, बाबा उस फरिश्ते में तो बहुत लाइट है, बहुत चमकीली ड्रेस है, बहुत सुंदर लगता है, और इसमें थोड़ी कमी है। अब बाबा ने उसको महसूस किया और उसके लिए, उस कमी को भरने के लिए क्या पुरुषार्थ किया होगा। सुना होगा शायद, कई क्लासेज में मैंने बात सुनाई है कि ब्रह्मा बाबा किसी कार्य व्यवहार को रोक करके, कोई किनारा करके योग नहीं किया, तपस्या नहीं की, लेकिन जो विस्तार था, बाबा ने एक तो बाहर जाना आना बंद कर दिया, कभी बच्चे कलकत्ता में बुलाते, कभी कानपुर में बुलाते, कभी बॉम्बे में, और बाबा पहले जाते थे। उसके बाद बाबा ने सब समेटा और एक ही स्थान पर, इसी पांडव भवन में रह करके, बहुत अच्छी तपस्या की, आवाज से परे जाने का अभ्यास किया। बाबा की उस समय की मुरलियों में गीत नहीं है, क्योंकि बाबा ने कहा बच्चे गीत की पढ़ाई में क्या आवश्यकता है, इसलिए गीत कविताएं बंद कर दो। सवेरे सवेरे बच्चे बाबा के कमरे में जाके बाबा से गुड मॉर्निंग करते थे, उसको भी बाबा ने कहा बच्चे सवेरे सवेरे बच्चों को आवाज में आने की जरूरत नहीं है, आवाज में आके गुड मॉर्निंग क्यों करते हो, इसको बंद कर दो। देखो उपराम होते गए, सब बातों से किनारा करते गए, रहे सबके बीच में, कार्य व्यवहार नहीं छोड़ा, जो प्लानिंग थी ये मकान बनाना है, ये सेवा करनी है, वो सब कुछ किया। और जितने बच्चों के पत्र आए, पत्रों का सार सुन करके उसके जवाब दिए। कोई ने बहुत लंबे लंबे पत्र पढ़ भेजे तो बाबा कहते थे बच्चे सार इसका क्या हो बताओ, बहुत इसेंस में सुनते और सुन करके उसका अपने हाथों से ही जवाब देते। और अगर सुनाने के बाद कोई साकार में फिर से आके सुनाने लगता तो बाबा कहता है बच्चे तुमने तो लिख दिया था ना, फिर इसको रिपीट क्यों कर रहे हो। माना बाबा ने आवाज की दुनिया से अपने आप को समेटा। बाहिमुक्ता जो भी खेलना, बच्चों के साथ पिकनिक पर ले जाना, कई प्रकार की जो पहले साकार में ब्रह्मा बाबा पालना का स्वरूप था, उसको परिवर्तन कर लिया, दृष्टि से ही पालना दी। और उस पालना से बाबा अपने आप को न्यारा बनाते गए। और तपस्या ऐसी थी जो बाबा का वो छोटा क्लासरूम है ना, हिस्ट्री हॉल, वहीं पर मुरली चलती थी। वहाँ एक घड़ी रखी थी, वो घड़ी में एक चिड़िया थी, चूं चूं करके बाहर आके घंटा बजाती थी। बाबा जब योग कराते थे कहते थे बच्चे इस बच्चे को बंद कर दो, ये आवाज़ करती है, इसको भी शांत कर दो। कहने का मेरा भाव है कि इतनी एकाग्रता, इतनी साइलेंस, इतनी उपरामता, हर बात में न्यारा प्यारा किनारा करते हुए सबसे अलग। तो ये पुरुषार्थ करके फिर बाबा ने उसी संदेशी को बुलाया कि बच्ची अब जाओ देख कर क्या उस बाबा में और इस बाबा में क्या अंतर है। और जब वो गई फिर से देखा तो उसको नीचे देखे ऊपर देखे दोनों समान लिखे, तो समान समझ करके उसको बताने की बजाय वो रोने लगी, कहती बाबा ये तो कर्मातीत बन गया। बाबा ने कहा बच्ची कुछ नहीं बना। लास्ट दिन तक भी बाबा ने अपनी वाणियों में ये नहीं कहा कि मैं कर्मातीत बन गया हूँ, संपन्न बन गया हूँ, मैं पुरुषार्थी हूँ। लेकिन संदेशी ने बता दिया था कि ये बाबा अभी जैसा ऊपर वाला दिखाई देता है ऐसा ये बन गया। और बाबा सब बात समेट करके और अपने आप को 18 जनवरी 69 को महावाक्य के उच्चारण करने के बाद अव्यक्त हो गए, फरिश्ता बन गए। हम सब बाबा के बच्चे इस लक्ष्य की ओर आगे बढ़ रहे हैं। बहुत सेवाओं का विस्तार है, बहुत सारी बातें हैं। हम सब ने अपने आप से पूछना है कि क्या समेटा है, क्योंकि फरिश्ता बनने के लिए सबसे पहले डबल लाइट स्थिति चाहिए। डबल लाइट उसको कहते हैं जिसमें एक ओर आत्मिक स्थिति है, आत्मा अपने आप में हल्की है, कोई उस पर बोझ नहीं है, कोई उसका वजन नहीं है, और दूसरा वो प्रकाश स्वरूप है, लाइट स्वरूप है। तो जब हम डबल लाइट रहते हैं, अपने आत्मिक स्वरूप में जितना रहते हैं, अपने प्रकाश स्वरूप की स्मृति में रहते हैं, मैं एक ज्योति बिंदु आत्मा इस शरीर से अलग हूँ, जितना आप ये आत्मिक स्थिति का अभ्यास बढ़ाएंगे उतना आपके चारों ओर एक बहुत सुंदर आभा मंडल बनता है। पवित्र विचारों से जो ओरा बनता है, प्रकाश का ओरा, पवित्र संकल्पों का ओरा, वही वास्तव में फरिश्ता ड्रेस है, लाइट की ड्रेस है। और चलते फिरते कर्म करते जितना आत्मिक स्थिति में स्थित होकर के कर्म करते हैं उतना उस फरिश्ते स्थिति का अनुभव होता है। जैसे शरीर में आए, इस मिट्टी की ड्रेस को, पांच तत्वों की ड्रेस को धारण किया, कर्म इंद्रियों से कर्म किया और कर्म करके न्यारे हो गए, उसी लाइट के शरीर में चले गए। ये अभ्यास है, बहुत समय का अभ्यास है और जितनी जवाबदारियों के बोझ हैं जिसको हम सब कह रहे हैं, ये मेरी जवाबदारी है, मेरी सेवाएं हैं, मेरा परिवार है, मेरा सेंटर है, मेरी एरिया है, बहुत सारा विस्तार जिसके बोझ के नीचे आज तक कई ब्राह्मण आत्माएं भी दबी हुई हैं। जब तक ये सब समर्पित नहीं किया कि सब बाबा तेरा है, मेरा मेरा जो कहते आए उसको अगर तेरा तेरा कह गए तो हल्के हो जाएंगे, सब कुछ तेरा है, जवाबदार बाबा है, उसने हमें निमित्त बनाया है। जितना सेवाओं में तीन बातें ध्यान पर रखना, कोई भी कार्य हैं चाहे लौकिक के हैं चाहे अलौकिक के हैं, अगर हम सबने बाबा को सही रूप में पहचाना है, उसको अपना बाबा कहा है, तो बाबा कहता है बच्चे इस समय मैं आप बच्चों का सर्वेंट बन करके आया हूं और जो कुछ तुम्हारे पास बोझ है मुझे दे दो, मैं ले लूंगा। इतना बाबा का बच्चों से प्यार है, इस बोझ को अभी उठाओ नहीं, तुम अभी मेरी गोद में आ जाओ, मैं तुम्हारी जवाबदारी संभालूंगा। तो जिन बच्चों ने बुद्धि योग से बाबा को कहा बाबा आप मेरे हो और आपका ये सब जो कुछ है आपका है, बाबा ने कहा अच्छा बच्चे तुमने समर्पित किया, अब मैं कहता हूं तुम इसको ट्रस्टी बन करके निमित्त भाव से संभालो। अगर ये ध्यान रखोगे, प्रवृत्ति में रहते, घर गृहस्थ में रहते, बच्चे हैं, परिवार है, बिजनेस है, खेती बाड़ी है, कुछ भी है, ये बाबा ने इस कार्य के लिए मुझे निमित्त रखा है। निमित्त समझने से क्या होगा, जो मैंपन का बोझ है उससे हल्के हो जाओगे। उसका कार्य है, हमें निमित्त रखा है, हम कर रहे हैं, कराने वाला वो है। तो कुछ भी है, चाहे फायदा हुआ चाहे नुकसान हुआ, चाहे नीचे ऊपर कोई बात हुई, मालिक मैं नहीं हूं वो है, हमें ट्रस्टी बनाया है। बहुत ईमानदारी के साथ हम सब कार्य करें और करने के बाद बाबा को अर्पित कर दें, शुक्रिया बाबा आपका, आपने करा लिया। जब निमित्त भाव आ जाता है तो बहुत नम्र चितात्मा बन जाती है, निर्माणता आ जाती है, कभी ये नहीं दिखाता है कि मैं कर रहा हूं, मैंने किया है, मेरा कार्य था, मेरी सेवाएं हैं, ये जो मेरी मेरी ये भी बोझ है। इस बोझ से जब आत्मा हल्की हो जाए तो फरिश्ता बनेगी। कभी भी बोल चाल कर्म व्यवहार में अहम भाव न दिखाई दे, कर्तापन का नशा, उल्टा नशा न दिखाई दे, जब इतने निर्माणचित बन जाएंगे, नम्रचित बन जाएंगे, तो नम्रचित आत्मा उसकी निशानियां क्या होती है, सहज ही अपने को मोल्ड कर लेती है, सबके साथ अपने आप को एडजस्ट कर लेती है, कभी भी टकराव की स्थिति नहीं बनती, मन मुटाव की स्थिति नहीं बनती। नम्रता एक ब्राह्मण जीवन में बहुत बड़ा कवच है। जिस ब्राह्मण आत्मा ने, चाहे वो समर्पित है चाहे वो प्रवृत्ति में है, नम्रता के गुण को धारण किया है, वो सुरक्षित है, वो सबके बीच में चल सकता है, रह सकता है, सबको अपने साथ मिला के चला सकता है। इसलिए जो निमित्त भाव से चलते हैं वो निर्माण चित बन जाते हैं, और तीसरा उनकी वाणी बहुत निर्मल हो जाती है। आजकल जितने भी टकराव बनते हैं, दूरियां बढ़ रही हैं, उसका एक मूल कारण जो मैंने नोट किया है वो बताता हूं, वो है वाणी की, वाणी में कंट्रोल नहीं, अनकंट्रोल, जो आया बोल दिया, जब आया बोल दिया। अगर फरिश्ता बनना है तो हर ब्राह्मण आत्मा को अपनी वाणी पर बहुत ध्यान देना है। इसलिए बाबा ने हमें एक मंत्र दिया, बच्चे कम बोलो, धीरे बोलो, मीठा बोलो, और जो जरूरी है, आवश्यक है, वही बोलो, ज्यादा नहीं, टू मच में नहीं जाओ। काम के लिए बाबा ने बाजा दिया है, बजाओ, लेकिन उतना ही बजाओ जिससे कोई डिस्टर्ब ना हो। तो हम सब निर्मल वाणी जितनी मधुर है, सरल है, संतुष्टता की है, वो वाणी अगर प्रयोग करें तो वाणी से परे जाना बहुत सहज हो जाएगा। बाबा अपने बच्चों को इस समय ये विशेष अभ्यास कराते हैं कि बच्चे आवाज में आओ और आवाज से परे चले जाओ, जैसे बाबा ने प्रैक्टिकल में करके दिखाया। बच्चों के बीच में आए अव्यक्त फरिश्ते को हम सब ने बुलाया, साकार में आए, आवाज में आए, मुरली चलाई और मुरली चला के अपना कार्य पूरा किया, आवाज से परे हो गए। हम सभी अभ्यास कर सकते हैं, करते हो? जब जरूरी है दो शब्द बोले, अपना काम किया और फिर अपने स्वरूप में स्थित हो गए। वाणी से परे, वानप्रस्थ क्या है? हमारी वाणी से परे की स्टेज। वानप्रस्थ वाणी से परे परम धाम है, घर है, लेकिन इस सृष्टि पर रहते हुए हम सब आर्गन्स का आधार लें, कर्मेंद्रियों को यूज करें, कर्म करें और कर्म पूरा हो गया, न्यारे हो जाए। अगर फरिश्ता बनना है तो इन तीन बातों का अच्छा अभ्यास करना, परिवार में रहते हुए, समाज में रहते, कार्य व्यवहार करते, जवाबदारियां संभालते, उसके बोझ से हल्का रहना बहुत जरूरी है। और बोझ तभी खत्म होगा जब हम उसको अर्पित कर देंगे, बाबा ये सब आपका है, आपने संभालने के लिए मुझे दिया है, मैं निमित्त हूं। इस भाव को बहुत अच्छी तरह से पक्का करो, नहीं तो क्या करूं, मेरे बच्चे हैं, कहना नहीं मानते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, हमारी माताएं तो इतनी डिस्टर्ब रहती हैं जैसे पता नहीं क्या इनके पर बोझ है। रचना रची, जन्म दिया, पालना की, बड़ा किया, उसके बाद अधिकार नहीं रखना है। अधिकार रखोगे तो दुखी होते रहोगे। कर्तव्य पालन करना आवश्यक है, फर्ज है, लेकिन कर्तव्य में अधिकार जहां आ गया वहां दुख है, परेशानी है, बोझ है। इसलिए कोई भी अधिकार नहीं रखो, बहुत नम्रता से, निर्माणता से गाइड जरूर करो, ये कर्तव्य है, उसको गाइड करना, उसको सही दिशा देना। आज देखो बाबा फरिश्ते रूप में अपने बच्चों को गाइड करते हैं, आते हैं, गाइड करते हैं, बच्चे क्रोध नहीं करना, एक महीने के लिए प्रैक्टिस करो, क्रोध नहीं करेंगे, छह महीने की प्रैक्टिस करो, क्रोध नहीं करेंगे, करो या न करो आपकी मर्जी। बाबा अपने को डिस्टर्ब करता है क्या? बच्चे बच्चे कह करके प्यार से समझाता है कि इसे कैसे इन विकारों पर विजय प्राप्त करो, कैसे दिव्य गुणों को धारण करो, सब कुछ सिखाता है। और अगर कोई नहीं करता है तो बाबा अपने को डिस्टर्ब नहीं करता है, इसका ये पार्ट है, इसका ये भाग्य है। तो माँ बाप को लौकिक जवाबदारियों से अगर फरिश्ता बनने का लक्ष्य है तो सब कुछ करते हुए कभी भी मैं और मेरेपन का बोझ अनुभव न हो। चार प्रकार का मैं बताता हूं, हमारी भाषा में मैं तो रोज आता है ना, कितनी बार मैं बोलते रहते हैं, मैं ये करता हूं। अगर मैं की गहराई में जाओगे ना तो एक है जो बाबा हमें सिखा रहे हैं, मैं एक आत्मा हूं, मैं शांत स्वरूप आत्मा हूं, मैं पवित्र स्वरूप आत्मा हूं, मैं सुख स्वरूप आत्मा हूं, ये मैं तो बहुत अच्छा है, देह मन स्थिति बना देता है, लेकिन मैं समझदार हूं, मैं पोस्ट पर हूं, मैं पोजिशन वाला हूं, मैं पढ़ा लिखा हूं, मैं अनुभवी हूं, मेरे अंदर योग्यताएं हैं, विशेषताएं हैं, प्लानिंग बुद्धि है, ये अभिमान वाला मैं, ये बड़ा खतरनाक है। इसको खत्म करने के लिए बहुत मेहनत करनी है, और सबके अंदर मैं आता है। जो कोई थोड़ा सा भी अच्छा काम करता है, बाबा का बच्चा है, सेवाएं कर दिया, कोई मकान बनवा दिया, कोई सेंटर की जमीन दिला दी, कोई कार्य करवा दिया, मैंने किया, मैं नहीं करता जैसे होता ही नहीं, कोर्स कराया, ज्ञान सुनाया, स्टूडेंट बनाए, मेरे स्टूडेंट थे, मैंने बनाए, ये जो अभिमान वाला मैं है इसको समाप्त करके ही हम फरिश्ता बन सकते हैं। और अगर अभिमान पूरा नहीं होता है तो अपमान की बहुत फीलिंग आती है, इतना अपमान महसूस करती है आत्मा, मेरी यहाँ इज्जत नहीं है, मुझे कोई जानता ही नहीं है, मैंने इतनी सेवाएं की हैं, मैंने ये करता हूँ, मैं ये करता हूँ, लेकिन मेरा क्या यहाँ है, कोई पूछता ही नहीं मुझे, तो ये मैं क्या है, ये दूसरा मैं अपमान वाला, मेरी इज्जत नहीं है, मेरा रिगार्ड नहीं है, मैं बड़ा हूँ, मैं अनुभवी हूँ, मैं इतना पुराना हूँ, मुझे लोग ठीक बात भी नहीं करते, देखते भी नहीं, और काम निकल गया तो उसके बाद तो पूछते भी नहीं, ये अपमान वाला मैं, ये तीसरा मैं है। और चौथा मैं पता कौन सा है, बहुत जल्दी कई आत्माएं चलते चलते दिल से कष्ट हो जाती है, मैं तो कोई काम की ही नहीं हूँ, मेरे अंदर तो कोई योग्यता ही नहीं है, मेरे तो बहुत कड़े संस्कार हैं, मैं क्या करूँ, मैं देवता बनने लायक नहीं हूँ, ये कौन से संकल्प है। बाबा कहता है ये बहुत निराशा के संकल्प हैं, दिल शिकस्त वाले संकल्प हैं, और ऐसी निराश उदास हताश रहने वाली आत्मा उमंग उत्साह में नहीं रह सकती, ये बहुत बड़ी बीमारी है, इससे बच के रहना। जिसके ऊपर भगवान की नजर पड़ी, जिन बच्चों को भगवान ने ढूंढा, शायद आप लोगों ने ढूंढा या नहीं ढूंढा, लेकिन भगवान ने आपको ढूंढ लिया, और अगर आपने ढूंढा भी है तो कैसे ढूंढा है, बिना एड्रेस के ढूंढा है, पता ही नहीं था वो कौन है कहाँ है, जिसने जो बता दिया सब जगह है, तू ही तू है, इसमें भी है उसमें भी है। और बाबा आज कह रहे थे, मैंने कहा बाबा गलती तो आपने भी किया है, अगर शंकर जी को माना तो साक्षात्कार करा दिया, हनुमान जी को माना तो साक्षात्कार करा दिया, श्री गणेश को भावना से आ दिया साक्षात्कार, अरे बाबा ने भी तो यही किया ना, हमको फंसा दिया उसमें, अभी कहता हूं उनसे छूटो, थोड़ा सोचना विचार करना। जब मुरली सुन रहा था, शंकर पार्वती की बात सुनाते सुनाते बाबा कहता है बच्चे बहुत भावना से याद करते हैं, तो मैं उनको साक्षात्कार करा देता हूं, भावना तो बिठा दिया ना, तो ऐसी भावनाएं बैठ गई जो भगवान से हम सब वंचित हो गए, दूरी बढ़ गई। अब बाबा ने हम सबको ढूंढ करके इधर उधर से खोज करके कोने कोने से कहां गांव में कितनी दूर दूर छिपे हुए लालों को निकाल लिया, अब भगवान की नजर पड़ी, उसने हमें चुना, कुछ तो विशेषता देखी, हम सब ने प्यार से ये तो पहचान करके कहा मेरा बाबा, और दिल से मेरा बाबा कहा, भगवान के बच्चे बन गए, इससे बड़ी विशेषता और क्या होगी। जो बड़े बड़े ऋषि मुनि विद्वान पढ़े लिखे शास्त्री वो नहीं भगवान को जान सके, उस निराकार ज्योति बिंदु बाबा को हम सब ने दिल से पहचान करके बाबा कहा है, ये बहुत बड़ी विशेषता है। इसलिए मेरे अंदर कोई विशेषता नहीं है, ये कभी भी सोच करके निराश नहीं होना। बाबा कहता है मेरा 9 लाख का लास्ट दाना भी जो है ना माला का लास्ट मणका भी बहुत विशेष है, आजकल के दुनिया के महान आत्माओं से भी वो VVIP है। इतनी ऊंची नजर बाबा की जन बच्चों पर पड़ी है, अगर वो बच्चे चलते चलते निराश उदास, ये क्या बीमारी हुई, हार्ट की बीमारी। क्या होता है हार्ट की बीमारी में, ब्लड का सर्कुलेशन रुक जाता है, कहते आर्टरीज ब्लॉक हो गई। तो मैं कल कैड वालों से मिल रहा था, हार्ट वालों से, हमने कहा भाई ये आर्टरी तो खोल रहे हो योग से, लेकिन दूसरी आर्टरी जो बंद हो जाती है चलते चलते, वो कौन सी, उमंग गुस्सा खत्म हो गया, नशा खुशी खत्म हो गया। अरे ब्राह्मण जीवन में अगर खुशी नहीं है, नशा नहीं है, हल्कापन नहीं है, उमंग गुस्सा नहीं है, तो ये हार्ट की बीमारी नहीं तो क्या है, ब्लॉकेज है। तो इसलिए कभी भी मैं निराश होकर के नहीं कहना मैं कोई काम की नहीं हूँ, मैं बहुत भिखारी हूँ, मेरे बहुत कड़े संस्कार हैं। बाबा कहता बच्चे इस तरह से अपने आप को श्रापित नहीं करो, अरे मैं बहुत विशेष आत्मा हूँ, महान आत्मा हूँ, भगवान का चुना हुआ रतन हूँ, उसने अपना बनाया है, मुझे वो संपन्न बना के छोड़ेगा। इसलिए बहुत उमंग उत्साह के संकल्प करना, और जो ये 4 प्रकार 3 प्रकार के मैंपन से मुक्त होकर के मैं एक शुद्ध पवित्र आत्मा हूं, इस मैं को बार बार पक्का करेगा, वो फरिश्ता बन जाएगा। तो इस फरिश्ता बनने के लिए रुकावटें तीन ही हैं, तीन रुकावटें भी सुना देता हूं। अगर महीनता से चेक करोगे, सबसे बड़ी रुकावट कहीं न कहीं आत्मा किसी न किसी में फंसी हुई है। लगाव, पहली निशानी उसकी है लगाव। और लगाव जब कहीं हो जाता है, ये अच्छा लगता है, बड़ा अच्छा है, इसकी ये विशेषताएं हैं। कईयों का अपने शरीर में लगाव हो जाता है, कईयों का अपनी विशेषताओं में लगाव हो जाता है, कईयों का अपने साथियों में लगाव हो जाता है। और लगाव ऐसा है जो मेल फीमेल की बात नहीं है, दो बहनें भी साथ रहती हैं सेवा करते करते, इतनी अटैचमेंट हो जाती है, लगाव हो जाता है, जो उनको हम ट्रांसफर नहीं कर सकते, उनको हम दूसरे स्थान पर नहीं भेज सकते। चलेंगे तो हम इनके साथ, रहेंगे तो इनके साथ, खाएंगे तो इनके साथ, मरेंगे तो इनके साथ। ये क्या है? ये बहुत सूक्ष्म लगाव है। और लगाव कभी भी संपूर्ण बनने नहीं देगा, क्योंकि फरिश्ते का कहीं लगाव नहीं है, उसके पांव कहीं धरनी पर ही नहीं दिखाए गए हैं, पांव सदा ऊपर दिखाए गए हैं। और फरिश्ते का अर्थ भी अगर हम करते हैं तो क्या बताते हैं, उसका कोई फर्श से ही रिश्ता नहीं। अब जब फर्श से रिश्ता नहीं माना, फर्श से भी लगाव नहीं, ये फर्श है ना शरीर जिसमें आत्मा रहती है, ये फर्श है, और इस फर्श में भी अगर लगाव है तो फरिश्ता नहीं बन सकता। फिर संबंधों में लगाव है, और इतना लगाव जो उसके बिना रह नहीं सकते, उसको देखते देखने के बिना रह सकते, उसे बात करने के बिना नहीं रह सकते। और आजकल की माया क्या है, कोई देख न ले इसलिए मोबाइल पर रात को छिप छिप के बातें करते। लगाव जहां होता है ना, कई बार बाबा इसको स्पष्ट करते हुए कहते हैं, जहां लगाव होता है वहां झुकाव हो जाता है, उनके प्रति आकर्षण बढ़ जाती है, झुकाव होता है, उसका प्रभाव पड़ जाता है। और जब लगाव झुकाव प्रभाव में आती है आत्मा, चलते चलते उस लगाव के कारण फिर उसके ऊपर दबाव आता है, ये करना है, ये करना है, ये करना, वो बंधन बनता जाता है। और बंधन वाली आत्मा कभी फरिश्ता नहीं बन सकती। हम इस संगम पर अपने बंधनों को जरूर चेक करें। बाबा अपने बच्चों को बंधन मुक्त बनाने के लिए आया है। कोई भी बंधन, कर्म का बंधन, सेवाओं का बंधन, शरीर का बंधन, संबंधों का बंधन, पढ़ाई लिखाई का बंधन, और सबसे बड़ा बंधन मन का बंधन, अपने ही मन के बंधन में बंधी हुई आत्मा, या तो मनमत पर चल रही है या परमत पर चल रही है, मनमौजी हो गई है। बाबा कहता ये बंधन भी लगाव की निशानी है, इसलिए सभी चेक करना। जहां लगाव होता है वहां क्या होता है, माताएं जानती हैं, अगर भोजन बनाते बनाते वो तले में लग गया तो क्या होता है, बदबू मारने लगता है। हलवा बना रहे हो लग गया, चावल बना रहे हो नीचे तले में लग गया तो उसकी खुशबू बदल जाती, उसका टेस्ट परिवर्तन हो जाता। ऐसे ही अगर चलते चलते किसी भी आत्मा में विशेष लगाव हो गया, विशेष अच्छा लगने लगा, तो वहां पर वातावरण में नेगेटिविटी आती है, लोग उसी नजर से देखने लगते हैं, इनका आपस में पता नहीं क्या चलता है, बहुत लगाव लगता है। हम फरिश्ता बनने वाली आत्माएं हर प्रकार के लगाव को बहुत सूक्ष्म चेक करें। लगाव बंधन है, और जहां लगाव है जहां बंधन है, जब आप योग में बैठोगे वहीं बुद्धि खिंच जाएगी। बना हुआ है ना? कहते एक नाविक नाव में बैठा था, नाव रात को सब बैठ गए, सवारी बैठ गई, नाव चलाने लगा और बार बार उसको हिला रहा था, चला रहा था, चप्पू चल रही थी, लेकिन रात भर बीतने के बाद जब सुबह देखा सबने, नाव तो वहीं की वहीं खड़ी हुई है, चल रात भर रही थी, हिल रही थी, डुल रही थी, चप्पू चलाने वाला चला रहा था। बाद में उसका ध्यान गया कि इस नाव का लंगर तो खोला ही नहीं, वो तो बंधा हुआ था। हम सब बाबा के बच्चे नाव में बैठे हैं, बढ़ रहे हैं, चल रहे हैं, लेकिन लंगर कहीं न कहीं बंधा हुआ है, किसी न किसी कर्म बंधन की रस्सियों में बंधा हुआ है। फरिश्ता कैसे बनोगे? फरिश्ता बनने के लिए तो बंधन को पहले खोलना पड़ेगा, तब तो हम अपनी मंजिल को प्राप्त कर पाएंगे। लेकिन मंजिल तक पहुंचने के पहले अपने बंधनों को चेक ही नहीं करता कोई। इसलिए एक बहुत अच्छी बात बाबा कहते हैं, बच्चे रियल को रियलाइज करो, रियल को रियलाइज करो। मैं अगर ब्राह्मण जीवन में ब्राह्मण बाबा का बच्चा हूं तो रियल को रियलाइज करो, जो मुझे बनना है, जिस स्टेज को बनने के लिए मैं पुरुषार्थ कर रहा हूं, पढ़ाई कर रहा हूं, भट्टियां कर रहा हूं, तपस्या कर रहा हूं, उस स्टेज में और वर्तमान स्टेज में अंतर कितना है। जब चेक करोगे, रियल को रियलाइज करोगे कि अभी मैं कहां पर खड़ा हूं और मुझे क्या बनना है। हर एक के आगे अपना लक्ष्य तो स्पष्ट रहता है ना कि नहीं, हमारी पढ़ाई का लक्ष्य क्या है, सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, मर्यादा पुरुषोत्तम, डबल अहिंसक। ये देवताओं की महिमा नहीं है, देवताएं तो बन गए वो, लेकिन संगम के पुरुषार्थी आत्माएं पुरुषार्थ करते करते इस लक्ष्य को प्राप्त कर लेते। तो हम चेक करें ना कितने सर्वगुण आए हैं। आत्मा संपूर्ण निर्विकारी, जिसके अंदर मनसा स्वप्न में भी विकारी संकल्प न टच करें, इतना अपने मन को स्वच्छ पवित्र बनाया है, उस पर हमारा अटेंशन है या चल रहे हैं। कई बाबा के चल रहे हैं, बन जाएंगे, हो जाएगा, समय आएगा बाबा बना देगा। बाबा कहता मेरे बच्चे भी कभी कभी अलबेलेपन का एक तकिया आराम से डल्लप का लगा लेते हैं, बन जाएंगे, हो जाएगा। इस भाषा का प्रयोग नहीं करना। अगर फरिश्ता बनना है तो अपने आप को संपूर्ण पावन जरूर बनाना होगा। इसके लिए आपको एकांत लेना पड़ेगा, मन बुद्धि को बिजी करना पड़ेगा। जो संस्कार बार बार आपका इमर्ज हो रहा है, देह मान वाला संस्कार, बॉडी कॉन्शियस वाला संस्कार, देह को देखना, देह के बारे में चिंतन करना, ऐसा है, वैसे है, ये करते हैं, वो करते हैं, पर चिंतन, पर दर्शन, दैहिक दृष्टि, दैहिक वृत्ति, दैहिक आकर्षण, जब तक आत्मा इस बंधनों से मुक्त नहीं हुई है तब तक संपूर्ण निर्विकारी स्टेज नहीं बनेगी। ब्रह्मा बाबा ने तीन बातों का पुरुषार्थ किया, निराकारी, निर्विकारी और फिर निरहंकारी। उसका अहंकार भी ना आ जाए कि मैं तो निर्विकारी बन गया हूं, मैंने बहुत अच्छी तपस्या की है, उसका भी अहंकार ना आ जाए, इसलिए निरहंकारी। तो हम सब पहले अपने लगावों को चेक करें, बंधनों को चेक करें, कहां पर आत्मा अभी तक अटकी हुई है। कोई अटके हैं, कोई लटके हैं, कोई चटके हैं। दादी जान की बहुत अच्छी क्लास कराती थी, कहीं ना कहीं चटक गए हैं, लटक गए हैं, अटक गए हैं। तो हम चेक कर लें कि आत्मा कहां पर अभी भी खींच रही है। बार बार संबंधों में बुद्धि जा रही है, धन में जा रही है, पदार्थों में जा रही है, जाने का समय है। कहते हैं दो दिन की जिंदगी का भरोसा नहीं और सामान रखा है 100 साल का इकट्ठा करके, ये चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए। तो हम सब फरिश्ता बनना चाहते हैं ना, तो फरिश्ता बनने के लिए पहली बात लगाओं को चेक करो और उन लगाओं को समाप्त करने की तपस्या करो, काटो कैंची से लगाओं को। और दूसरी बात है थोड़ी थोड़ी बातों में तनाव पैदा होता है, टेंशन। छोटी सी बात, कोई भी बात, छोटी छोटी बातें सबके सामने आती है। ऐसा कोई भी ब्राह्मण आत्मा नहीं है कि मेरे आगे कोई बात ही नहीं आती, मैं तो बन गया जैसे। संगठन है, परिवार है, 63 जन्म हमने देह मान में रह करके कर्म विकर्म बनाए हैं, पाप कर्म किए हैं। अब वो अंत समय में सब चुक्त होने का समय है, किसके आगे बातें नहीं आती, सबके आगे आएंगी, आती हैं और आएंगी, बड़े बड़े रूप में आएंगी। लेकिन अगर सोचने की आदत है क्या करूं, कैसे करूं, ये बात आ गई, छोटी छोटी बातों को बहुत बड़ा पहाड़ बना देते हैं। अगर राई जैसी बात को आपने पहाड़ बनाना सीख लिया, खुद भी उसके नीचे दब जाओगे और दूसरों को भी दबा दोगे। इसलिए संगम का समय बड़ा मूल्य है। कोई भी बातें आती हैं, नथिंग आई हैं, बाबा का साथ लो, विशेष योग करो, एकांतवास करो और उस बात को सहज पार कर लो। इसलिए छोटी छोटी बातों को सोच सोच करके बड़ा नहीं करना, वर्णन करके तिल की बात को तार नहीं बना देना। वर्णन कर दिया तो बहुत बड़ी बन जाएगी, राई पहाड़ बन जाएगी। इसलिए बातें आई, कोई हिसाब किताब आए, प्रॉब्लम आई, समस्याएं आई, किसी के आगे तन का आता है, किसी के आगे धन का आता है, किसी के आगे संबंध का आता है, किसी के आगे सरकार का आता है, किसी के आगे संस्कार का आता है, किसके आगे नहीं आता है, कोई ना कोई बातें आती हैं। लेकिन जहां बाबा है, बाबा कहता है बाबा है जहां, वहां बातें कहां है। बाबा के नाम पर सहन करो, बाबा के नाम पर संभालो, बाबा के नाम पर उसको भुला दो। तो जब ऐसी स्थिति रहेगी, हमने अपनी दादियों को क्या देखा, पेपर नहीं आया क्या, सब बातें आई, हर बात आई, और हर बात को उन्होंने इतना सहज रीति से, कभी भी पूछो दादी दर्द है, तकलीफ है, इतनी बीमारी है, नहीं नहीं कोई दर्द नहीं, कोई तकलीफ नहीं, डॉक्टर आ रहा है सामने, दवाई के लिए बुलाया गया है, डॉक्टर कोई मुस्कुराते पूछते तुम डॉक्टर ठीक है ना, ये भाषा रही है दादियों की बीमारी में। हमारी निर्मल संता दादी जब हॉस्पिटल में गई ना, परदादी हम कहते हैं बाबा की जो बेटी थी, बहुत ज्यादा बीमारी थी, खाना नहीं खा सकती थी, कुछ भी नहीं था, और जब डॉक्टर आया तो मुस्कुरा के हंसते हंसते कहते डॉक्टर तुम ठीक तो है ना, और डॉक्टर सोचने लगा ये पेशेंट है या मैं पेशेंट हूं। दादियों ने कभी भी बीमारी में भी अपने को बीमार नहीं समझा, बहुत सरल रीति से बातें आई हैं, खत्म हो जाएंगी। इस शरीर का कोई पुराना हिसाब किताब चुकतो होगा, उसको सोच सोच करके हाय हाय करके परेशान न हुई न परेशान किया, और कहीं भाई थोड़ी सी बात होती है 50 लोगों को सुनाएंगे, 50 डॉक्टर बदल देंगे, कभी नेचुरोपैथी, कभी एलोपैथी, कभी होम्योपैथी, कभी कोई पैथी, पता नहीं कहाँ कहाँ भटक जाएंगे जाके, आई है चली जाएगी, जो आता है वो जाता है। थोड़ा धैर्यता से, शांति से, योग का दान दे करके, बाबा की शक्ति लेकर के, जो जरूरी है दवाई करो, मना नहीं करता बाबा, लेकिन ज्यादा तोबा तोबा नहीं करो, हाय हाय नहीं करो, बात आई है खत्म हो जाएगी। ये सब बातें इंसान को तनाव में ला रही हैं, टेंशन पैदा कर रही हैं। छोटे छोटे बच्चे को किस चीज का भाई तनाव है, मुझे तनाव है, मुझे टेंशन है, पढ़ाई का टेंशन है, स्कूल जाने का टेंशन है। बाबा के बच्चों के पास, कभी कोई बाबा का बच्चा किसी डॉक्टर के पास जाता ना, वो देखता उसके चेहरे को, उसको लगता तनाव है, कहता बहन जी आप सबका तनाव मुक्त करने वाली, आप क्यों क्यों तनाव हो गया, आपको टेंशन क्यों कहाँ से आ गया। हमारी दादी जी कहती थी टेंशन उनको होता है ना जिनके टेंशन है, मेरे थोड़ी टेंशन है, मैं 10 बच्चों की माँ थोड़ी हूँ जो मुझे टेंशन होगा, मैं तो बाबा की बच्ची हूँ। अभी सब बच्चे बना, बच्चे बन जाओ, बाबा कई बार कहते हैं तुम बच्चे बन जाओ बच जाओगे, मैं बड़ी हूं, मैं दादी हूं, मैं मम्मी हूं, मैं फलानी नानी ताती हूं, ये नई स्मृति में रखो, मैं तो बाबा तेरी बच्ची हूं, और बच्ची की पालना बाबा कर रहे हैं, इसलिए हम सब बाबा के बच्चे बन करके तनाव मुक्त रहे, सब कुछ बाबा कराने वाला है, इसलिए हम सबको बहुत हल्का रहना, कोई भी बात की ऐसी टेंशन वाली बात को सोच सोच करके अपने मन को डिस्टर्ब होने नहीं देना, फरिश्ता बनना है ना, इसलिए तनाव मुक्त रहने वाली आत्मा फरिश्ता बन सकती है। और तीसरी बात है अपना पुराना स्वभाव, वास्तव में स्वभाव अच्छी चीज है, स्व का भाव, आत्मा का भाव, लेकिन जो आज हमने इस नेचर को कह दिया है मेरा स्वभाव है, मेरी नेचर है, मैंने बोल दिया, मैंने कर लिया, मेरे से हो गया, मैं चाहती तो नहीं थी, इतनी आत्माएं नेचर के गुलाम बन गई। आज जो ये प्रकृति की नेचर परेशान कर रही है ना, उसका मूल कारण क्या है, हम अपनी नेचर के, अपनी आदतों के गुलाम बन गए। अब बाबा हमको मालिक बनाना चाहता है कि बच्चे ये नेचर बनी कैसे, जो हमारे संस्कार बने, स्वभाव बने, उसका मूल कारण क्या है, सोचा है कभी। जब कोई संकल्प बार बार चलते हैं मन के अंदर और उन संकल्पों को सहयोग बुद्धि का मिल जाता है, हाँ ये ठीक है, ये राइट है, जो सोचा बुद्धि ने उसको साथ दे दिया, वो नेचर बना लिया हमने, वो करने लगे वही वैसे ही चलने लगे। कई इशारे मिलते हैं कि ब्राह्मण जीवन में इस प्रकार की नेचर, किसी की बात को बीच में कट ले करना, किसी की सुनी सुनाई बात को इधर से उधर कर देना, आज कितनी सारी समस्याएं इससे पैदा होती हैं। और बाबा कहता है ये जो संस्कार है ना, ये नेचर जो है, थोड़ी सी बात देखी सुनी और 10 लोगों को सुना दिया, उसके पीछे क्या है, वो किस बात से किस भाव से बात हो रही है, उसको सोचने की बजाय समझने की बजाय अगर हमने कोई भी बात साधारण देख ली और उसको दूसरों तक पहुंचा दी, ये बहुत गंदी नेचर, इसको बाबा एक नाम देते मंथरा वाली नेचर, धूती पने की नेचर, जो बहुत बड़ी रामायण खड़े कर देगी। इसलिए कभी भी कोई बात देखो सुनो, जब तक उसका पूरा छानबीन नहीं है, जब तक रियलिटी का पता नहीं है, तब तक उसको बातों में इधर उधर फैलाना नहीं। ऐसे स्वभाव जो बने आत्मा के, देखने के, सुनने के, सुनाने के, पर चिंतन करने के, पर दर्शन करने के, बाबा कहते बच्चे ऐसी नेचर को, इस स्वभाव को, परिवर्तन को ये फरिश्ता बनने नहीं देगा। अगर फरिश्ता बनना है, सचमुच लक्ष्य रखा है कि मैं फरिश्ता बन करके दिखाऊं, बाबा का बच्चा हूं, जैसा बाबा बनाना चाहता मैं बन जाऊं, तो उसके लिए अटेंशन देना कि जो ऐसी देहमान वाली आदतें हैं, नेचर बनी है, स्वभाव बना है, उसका परिवर्तन, उसको बहुत चेक करना पड़े। स्वभाव इतनी जल्दी बदलते नहीं है। कोई ऐसे गरीब घर में जन्म लेते हैं ना, जिनकी पालना ऐसे साधारण रीति से होती है, जो बच्चे उस बेगरी में जीते हैं, क्या खाया, क्या पहना, कैसे रहे, कैसे सोए, कैसा संग किया, वो नेचर बन जाती है। और ऐसी नेचर वाली आत्माएं बड़ी बन जाएं, कहीं अच्छे पोस्ट पर आ जाएं, वो नेचर नहीं समाप्त होती है, उसी तरह की नेचर अपना काम करती है। इसलिए बाबा अपने बच्चों को कहते हैं, अभी आप बच्चों का स्वभाव, आप बच्चों की नेचर ब्राह्मण नेचर होनी चाहिए। आपका ये मर्जीवा जन्म है, इसलिए जो शूद्रपन की नेचर है उसको परिवर्तन करो, बहुत महीनता से चेक करना। ये जो नेचर चलते चलते बोल देने की, खाने की, किसी की बात को कट करने की, किसी की बातों को कान लगा के सुनने की, फिर सुनी हुई बात को वातावरण में फैलाने की, बहुत सारी व्यर्थ नेचर है, साधारण नेचर है, जो ब्राह्मण जीवन में उन्नति में रुकावट है। इसलिए हम सब फरिश्ता बनने वाली आत्माओं को लगाव, तनाव, पुराने स्वभाव को समाप्त करके, बाबा मैं तेरा हूं तू मेरा है, फरिश्ता बन जाओगे, इसी अभ्यास से बन जाओगे। जो आज बाबा एक कपाट पढ़ा रहा था ना, एक वृत्त, एक बाबा दूसरा न कोई, एक रस स्थिति, एकाग्र चित्त स्थिति, इसी एक के पाठ से फरिश्ता बन सकते हैं। अभ्यास कर, लक्ष्य रखो, बहुत ऊंचा लक्ष्य बाबा ने दिया है, लेकिन उस लक्ष्य की पूर्ति के लिए सबसे पहले मुझे पक्का सच्चा ब्राह्मण बनना है। ब्राह्मण माना ब्रह्मचर्य व्रत का संपूर्ण पालन, ब्राह्मण माना ब्रह्मा के आचरण पर चलने वाले ब्रह्माचारी, ब्राह्मण माना ब्रह्म मुहूर्त में उठकर ब्रह्म में विचरण करने वाले, ब्रह्मा भोजन खाने वाले, ऐसे ब्रह्माचारी बन करके सच्चे पक्के ब्राह्मण हम बने तो हम फरिश्ता बन जाएंगे। फरिश्ता बनने में और कोई रुकावट नहीं है, लेकिन जहां ब्राह्मण जीवन में कोई भी प्रकार की कमी कमजोरी संस्कार आते हैं, वो संस्कार ब्राह्मण से फरिश्ता बनने नहीं देते। तो सब डबल लाइट रहना, सोच सोच के भारी नहीं हो जाना, बहुत ऊंची बातें सुना दी नहीं, हल्के रहो, फरिश्ता माना ही हल्का। सब जवाबदारी बाबा को दो, अपने आप को फुल सरेंडर कर दो। हमारी दादी गुलजार एक शब्द बड़ा प्यार से कहती थी हमारे पांडवों को, भाइयों को, तुम लोग अपने विवेक को भी समर्पण करो, विवेक चलाते हो, बुद्धि चलाते हो बाबा के सामने, बुद्धिमानों की बुद्धि बाबा है, तुम अपनी बुद्धि क्या चला रहे हो, इसको भी समर्पण करो अगर फरिश्ता बनना है तो। नहीं तो ये मैंपन की बुद्धि, मैली बुद्धि फरिश्ता बनने नहीं देगी। तो जितना सरल, मिलनसार, नम्रचित, मधुर ये दिव्य गुण हमारे अंदर आते जाएंगे, उतना ये फरिश्ता स्थिति सहज बन जाएगी। इसलिए चलते फिरते कर्म करते कर्मयोगी बन करके रहना। मैं एक अभ्यास करता हूँ, सवेरे आँख खुलते ही मैं आत्मा इस शरीर में पाठ बजाने के लिए अवतरित हुई हूँ। आँख खुलते ही अभ्यास करो कि मैं इस शरीर में परमधाम घर से अवतरित हुई हूँ, मैंने नया पाठ बजाने के लिए आज इस शरीर धारण किया है। बाबा ने कर्म क्षेत्र पर श्रेष्ठ कर्म करने के लिए मुझे भेजा है, कर्म किया बाबा आपने करा लिया, शुक्रिया आपका, समर्पित करो। और रात के समय सोते समय ऐसे शरीर से न्यारे हो जाओ, बाबा ये सब कार्य जो कुछ दिनचर्या में हुआ, अगर कुछ नीचे ऊपर हुआ तो सॉरी, क्षमा करना, आगे के लिए ध्यान दूंगा, और जो अच्छा हुआ बाबा आपको समर्पित, स्वाहा। अगर ऐसी दिनचर्या बना लो, बीच बीच में आओ, शरीर में आओ, शरीर से न्यारे हो जाओ, शरीर का आधार लो, शरीर से अलग हो जाओ, आवाज में आओ, आवाज से परे चले जाओ, तो ये अभ्यास संपन्न संपूर्ण बनाएगा। हम ब्रह्मा बाबा के समान संपन्नता को पा सकते हैं, अव्यक्त फरिश्ता बन सकते हैं। जब अव्यक्त कहते हैं तो अव्यक्त में ही उसका अर्थ समाया हुआ है, जहां व्यक्त नहीं है, व्यक्त भाव नहीं है, व्यर्थ भाव नहीं है, जो व्यक्त और व्यर्थ इन दोनों से बचा के रखने को रखते हैं वो फरिश्ता बन जाते हैं। तो हम सब देखें हमारी दिनचर्या के अंदर कितनी व्यक्त बातें आती हैं, साधारण बातें आती हैं, और कितनी व्यर्थ बातें चलती हैं। जिस आत्मा ने व्यर्थ को समाप्त कर लिया, व्यर्थ पर जीत प्राप्त कर ली, क्योंकि सबसे बड़ा विकार, सबसे बड़ी माया व्यर्थ सोचने की है, व्यर्थ संकल्पों की है, और इस पर कंट्रोल करने के लिए बहुत अटेंशन देना पड़ेगा। नहीं तो जो बात देखे, ऐसा क्यों हुआ होगा, ऐसा क्यों किया, किसने किया, कब हुआ, कहाँ हुआ, वह संकल्प की क्यों लग गई, काम कुछ नहीं, लेना देना मेरा कुछ नहीं, सोच रहे हैं। और ये अधिक सोचने की बीमारी, व्यर्थ सोचने की बीमारी कभी भी फरिश्ता बनने नहीं देगी। इसलिए देखो, भले बाबा देखने की छुट्टी देता है, लेकिन देखो समझदार बन करके, समझ लो लेकिन अंदर समाना नहीं, उसी दृष्टिकोण से देखना नहीं, ठीक है, इसका पार्ट है, ये बहुत अच्छा है, जो चल रहा है ड्रामा के अंदर सब एक्यूरेट है। जब इतना अच्छा ज्ञान हमारे अंदर इमर्ज रहेगा तो कोई भी व्यर्थ बात देखेंगे, सुनेंगे, बोलेंगे, सुनाएगा कोई, उसका प्रभाव नहीं पड़ेगा, वो अंदर नहीं जाएगी, ऊपर से चली जाएगी। अंदर चली गई तो क्या करेगी, अंदर गुब्बारा हो जाएगा, तंग करेगी। इसलिए ध्यान देना, कोई भी बातें देखो, सुनो, कोई सुना दे, आजकल सुनाए कोई ना सुनाए, इसमें मोबाइल के अंदर पता नहीं कितना कीचड़ा भर गया है आकर, इधर की बात उधर, इधर की बात, अरे क्या कहाँ क्या हुआ, कैसे हुआ, लेना देना कुछ नहीं, और सोच रहे हैं अच्छा चलो हमारे तक आई तो ठीक, फट से फॉरवर्ड, इधर 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 भेज दिया, व्यर्थ वातावरण बना दिया। क्या हुआ, कैसे हुआ, उसकी जांच करने की बजाय व्यर्थ का वातावरण बन गया, दोषी बन गए, ये बंधन बन गया। इसलिए हम सब बाबा के बच्चे ध्यान दें, जो काम की बात नहीं है, जो मेरी उन्नति में रुकावट है, न मुझे देखनी है, न सुननी है, न सोचनी है, और न किसी को सुनानी है, न किसी को बतानी है, इतना समाने की शक्ति धारण को, व्यर्थ को बचाओ, व्यर्थ में समय और शक्तियां नष्ट न हो। तो व्यर्थ को बचाएंगे, समर्थ स्थिति बनाएंगे, तो फरिश्ता बन जाएंगे, ठीक है, ओके, ओम शांति। चलो अभी हम फरिश्ता स्थिति का अनुभव करेंगे, ठीक, आधा घंटे के लिए, हिलेंगे तो नहीं, उठेंगे तो नहीं, सब आधा घंटे के लिए, इस देवांश से बिल्कुल डिटैच होकर के, अलग होकर के, मैं जो हूं जैसी हूं। मैं कमेंट्री नहीं देता ज्यादा, लेकिन मैं लक्ष्य जरूर देता हूं। तो पहले अगर किसी को बहुत जरूरी उठना है तो भले उठो, गीत बजा दो, फिर मैं लक्ष्य दे करके आधा घंटा योग करेंगे।
चले हैं।
ड्रिल करेंगे, साकारी, आकारी और निराकारी, ये तीनों स्थितियों का अनुभव हर एक पहले अपने भ्रकुटी आसन पर इस अकाल तख्त पर बैठकर अपने स्वस्वरूप का दर्शन करो, अपने तीसरे नेत्र से अपने स्वरूप को देखो, अपने स्वधर्म में स्थित हो जाओ। मैं एक चैतन्य लाइट हूं और परम पवित्र आत्मा हूं। बहुत दिल से प्यार से सभी उस परम ज्योति सर्वशक्तिवान सर्वसमर्थ बाबा को इस सभा में बुलाओ। हर एक बाबा के साथ कंबाइंड हो करके बैठो। ये भ्रकुटी आसन बहुत स्वच्छ है, पवित्र है। मैं आत्मा अपने परम प्रिय प्राणों से प्यारी बाबा का आवाहन कर रही हूं। बाबा के साथ का कंबाइंड स्वरूप का अनुभव करो। मैं आत्मा उस परमात्म प्यार में लवलीन हूं। उनकी सर्व शक्तियां मुझे समान संपन्न बना रही है। आत्मा और परमात्मा का ये सुंदर मिलन परमानंद की अनुभूति करा रहा है। इस अनुभव के सागर में समा जाओ। मैं सर्वशक्तियों से संपन्न, एक चैतन्य शक्ति आत्मा, इस साकार दुनिया से, इस पांच तत्वों के मांडवे से दूर, अपने लाइट के वतन में, फरिश्तों की दुनिया में, बाप दादा के साथ उनकी नजरों का, सर्वशक्तियों की किरणों का अनुभव कर रहे हैं। बाप दादा लाइट की ड्रेस में, मुझ आत्मा का बहुत सुंदर श्रृंगार कर रहे हैं। मैं एक चमकीली ड्रेस में फरिश्ता हूं, बाबा का वरदानी हाथ मेरे मस्तक पर है। ये अव्यक्त वतन मेरा अपना निज वतन है। मैं संपूर्ण फरिश्ता, अपने फरिश्ते स्वरूप से पूरे ग्लोब को सामने मर्ज करो। उस ऊंची छोटी से सर्वात्माओं को शांति और शक्ति का दान दो, सकास दो। अपने दयालु कृपालु मास्टर रहम दिल दाता स्वरूप को इमर्ज करो। चारों ओर की आत्माएं पुकार रही हैं, दुख दर्द में परेशान हो रही हैं। मैं मास्टर सुखदाता, शांति दाता, रहम दिलात्मा सबको रहम की दृष्टि दे रहा हूं, नजर से निहाल कर रहा हूं। अनेक आत्माएं दर्शन से प्रसन्न हो रही है। अपने फरिश्ते स्वरूप का साक्षात्कार कराओ। अव्यक्त वतन से भी दूर अपने निज धाम में ज्ञान सूर्य बाबा के बिल्कुल निकट परम धाम की असीम शांति शक्ति और संपूर्ण पावन ब्रह्म घर में मैं आत्मा उस लवलीन स्थिति का अनुभव कर रही हूं। ये घर मुझ आत्मा का विश्राम का स्थान है। उस निराकार परम ज्योति सर्वशक्तिमान ज्ञान सूर्य बाबा की सर्वशक्तियों की किरणें मुझ आत्मा को मास्टर ज्ञान सूर्य बना रही है। परम शांति का सच्चे प्यार का अनुभव करो। प्यार के सागर में समा जाओ।